अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश, 1961, पृष्ठ संख्या 128। अंधेरे बंद कमरे दिल्ली की पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक आधुनिक भावबोध संपन्न उपन्यास है। इसमें लेखक ने महानगरीय परिवेश के बुद्धिजीवी वर्ग के जीवन की मानसिक गुत्थियों को प्रकट किया है। डॉक्टर कुसुम वार्ष्णेय के मतानुसार इन्वर्टेड कमापन, मोहन राकेश का यह पहला उपन्यास सातवें दशक के नए आयाम खोलने की गवाही देता है। उसमें पहली बार स्त्री पुरुष के नए संबंधों और तनावों को भरपूर खुली आंखों से देखने की कोशिश की गई है। उसमें सांस्कृतिक विघटन, बदलते बाह्य परिवेश में स्त्री पुरुष की मानसिकता की ढकी छिपी रेखाएं और कोण पहली बार उजागर हुए हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सम्मेलन पत्रिका साहित्य संस्कृत भाषा विशेषांक चैत्र मार्ग शीर्ष शक संवत 1894। इस उपन्यास में जहां एक तरफ दिल्ली के बुद्धिजीवी लोगों का सोफिस्टिकेटेड समाज है, वहां दूसरी तरफ कस्बापुरा की निम्न वर्गीय जिंदगी का चित्रण है, जिसे श्रीकांत वर्मा प्रतीकात्मक ढंग से ड्राइंग रूम और सड़क की संज्ञा देते हैं। ड्राइंग रूम में हरवंश, नीलिमा, सुषमा, मधुसूदन, जीवन भार्गव, विश्वमोहन शुक्ला आदि आते हैं, तो सड़क में ठकुराइन और उसकी पुत्री निम्मो आती है। वर्मा जी के उपन्यासों के गठन में कुछ दोष दिखा है और वे कस्बापुरा के जीवन को आधुनिक जीवन पर लगे पैबंद की तरह देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वस्तुतः मोहन राकेश यहाँ विसदृश्यता ब्रैकेट में कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से कदाचित यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे बुद्धिजीवियों के सुख और हास विलास ही नहीं, उनके दुख भी ऊपर से ओढ़े हुए हैं। पैराग्राफ चेंज। वंश और नीलिमा आधुनिक शिक्षित दंपत्ति हैं। काटसीप के दिनों में वे दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। विवाह के उपरांत हरवंश नीलिमा को अल्ट्रा मॉडर्न बनाने के लिए पेंटिंग और नृत्य आदि के लिए प्रेरित करता है, परंतु जब इन कारणों से नीलिमा हरवंश के मित्र वर्तुर्न में अधिक चर्चित होने लगती है, तब हरवंश को बुरा लगता है। हरवंश एक तरफ नीलिमा को आधुनिका बनाने के लिए प्रेरित करता है, परंतु दूसरी तरफ उसके भीतर का मध्यकालीन पुरुष उसे कुंठाग्रस्त कर देता है। हरवंश का विदेश भाग जाना, उमा दत्त के नृत्य टीप में नीलिमा को भेजकर बाद में उससे असहयोग कर लेना, स्वदेश लौटने पर नीलिमा के नृत्य प्रदर्शन में भी पूरी तरह साथ न देना, नीलिमा के जन्मदिन को भी भुला देना, जैसी बातों से हरवंश की उक्त प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। उसकी इस वृत्ति का विश्लेषण करते हुए नीलिमा एक स्थान पर कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, तुम सिर्फ इस हीन भावना के शिकार हो कि लोग मुझे तुमसे ज़्यादा जानते हैं और उनमें जो बात होती है वह तुम्हारे विषय में न होकर मेरे विषय में होती है। तुम्हें यह बात खा जाती है कि लोग तुम्हारी चर्चा नीलिमा के पति के रूप में करते हैं। तुम्हें डर लगता है कि अगर मेरा प्रदर्शन सफल हुआ तो लोग मुझे और ज़्यादा जानने लगेंगे। पृष्ठ संख्या 129। और तुम अपने को छोटा महसूस करोगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश, पृष्ठ संख्या 345। वस्तुतः इस उपन्यास के हरवंश की समस्या आठवें दशक में प्रदर्शित फिल्म अभिमान के नायक की समस्या से मेल खाती है। यह भारतीय पुरुष के संक्रांतिकालीन मानसिकता को उद्घाटित करती है। आधुनिक शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता तथा नारी मुक्ति के वैचारिक स्रोतों ने स्त्री को एक उच्च भूमिका प्रदान की है। स्त्री का यह स्वतंत्र व्यक्तित्व पुरुष को लुभाता तो है, परंतु विवाह के पूर्व के प्रेमपूर्ण दिनों में बाद में विवाह के उपरांत स्त्री की यही स्वतंत्रता और बुद्धि प्रतिभा उसे खलने लगती है। फलतः स्त्री पुरुष की अहम की टकराहटों में उसके दाम्पत्य जीवन खंडित होने लगते हैं। आंतरिक विचार सूत्र के अभाव में हरवंश और नीलिमा का प्रेम चूक जाता है। हरवंश की कुंठित प्रवृत्ति से निराश होकर नीलिमा अपने माँ के पास चली जाती है, परंतु उपन्यास के अंत में दोनों में पुनः समझौता हो जाता है और नीलिमा हरवंश के पास आती है। परंतु यह केवल होता है कि वे दोनों साथ रहने के लिए अभिशप्त हैं। उनके जीवन में उमंग और उल्लास को जगाने वाले आंतरिक प्रेम का अभाव है। पैराग्राफ चिन्ह, नीलिमा का व्यक्तित्व उन्मुक्त और प्रखर है। वह एक आधुनिका और महत्वाकांक्षी नारी है। उबानु या जीवन भार्गव के प्रति उसमें जो आकर्षण है उसे वह छिपाती नहीं है, परंतु होटल के एक कमरे में उबानु के साथ ठहरने के बावजूद वह अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करती। वह इस रूप में आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी नारी है। वह इस बात में विश्वास करती है कि पति पत्नी में केवल शारीरिक संबंध ही सब कुछ नहीं होते, इसके अतिरिक्त भी कुछ होता है जिसके अभाव में स्त्री का केवल पुरुष की वासना पूर्ति का साधन मात्र रह जाना उसके स्वाभिमान के खिलाफ है। वस्तुतः आज की स्त्री न स्वयं गुलाम रहना चाहती है और न ही पुरुष को गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है मानवीय अधिकार। जैविक भिन्नता के कारण वह निर्णय के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहती। नीलिमा आधुनिक स्त्री के इस स्वर को प्रकट करती है। पैराग्राफ चेंज, नीलिमा की बहन शुक्ला नीलिमा से भिन्न प्रकार की स्त्री है। वह पुरुष द्वारा रक्षित रहने में स्वयं को सुरक्षित समझती है। हरवंश शुक्ला को चाहने लगता है। शुक्ला हरवंश को ही आदर्श मानती है। शुक्ला को चाहने के कारण ही हरवंश अपने मित्रों से कटता जाता है। हरवंश शुक्ला के सम्मुख पहले तो अपने मित्रों की प्रशंसा करता है, परंतु ज्यों ही शुक्ला उनको सम्मान देने लगती है वे लोग उसके लिए तिरस्करणीय हो जाते हैं। हरवंश के विदेश जाने पर शुक्ला हरवंश के मित्र सुरजीत से विवाह कर लेती है। हरवंश को इस बात का भी बुरा लगता है, परंतु सुरजीत से विवाह करने पर शुक्ला अधिक संतुलित हो जाती है। नीलिमा के विदेश जाने पर वह हरवंश का ख्याल भी रखती है। पैराग्राफ चेंज, इस उपन्यास का सर्वाधिक आधुनिक पात्र है सुषमा श्रीवास्तव। प्रत्येक क्षेत्र में वह पुरुष की स्पर्धा करती है। वह दो टूक बातें करने वाली निखालस और प्रबुद्ध महिला है। कॉन्स्टिट्यूशन हाउस के अंधेरे बंद कमरे में वह मधुसूदन के करीब आती है, परंतु उसकी बातों में मधुसूदन को पॉलिटिकल सेक्रेटरी की बात की गंध आती है और वह भाग खड़ा होता है। मधुसूदन इस उपन्यास का नरेटर है। वह शुक्ला सुषमा आदि के परिचय में आता है, उनकी तरफ आकृष्ट भी होता है, परंतु अंततः कस्बापुरा की ठकुराइन की पुत्री निम्मो को वह अंगीकृत करता है। पृष्ठ संख्या 130। डॉक्टर अनीता चौधरी मोहन राकेश के उपन्यासों को अस्तित्ववादी दर्शन के परिवेक्ष में देखती हैं। उनके अनुसार इस उपन्यास में इन्वर्टेड कॉमापन नारी पुरुष के बीच बदलते संदर्भ और उनके बीच पनपते अनाम और जटिल रिश्तों की सूक्ष्म व्याख्या मोहन राकेश ने की है। देश विभाजन, शरणार्थी समस्या से उत्पन्न उदार स्वेच्छाचार, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत हुए औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक युग के परंपराओं के स्खलन तथा नैतिकताओं की नई व्याख्याओं ने व्यक्ति के अपने अस्तित्व के प्रति भी संकट खड़ा कर दिया है तथा वह केवल अपने विषय में ही सोचता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ वीणा मासिक पत्रिका अप्रैल 1996 पृष्ठ संख्या 212। इस प्रकार अंधेरे बंद कमरे महानगरीय परिवेश के तथाकथित बुद्धिजीवियों के मानसिक द्वंद्वों और अंतर विरोधों को रूपायित करने वाला उपन्यास है। यह अंधेरे बंद कमरे उनके अचेतन मानस का प्रतीक है। रेखा भगवती चरण वर्मा 1964। रेखा भगवती चरण वर्मा का एक ऐसा उपन्यास है जिसमें लेखक ने उपन्यास के प्रारंभकालीन अनमेल विवाह की समस्या को एक नए सिरे से उठाया है। उपन्यास की नायिका रेखा सुंदर, स्मार्ट एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की एमए की प्रतिभा संपन्न छात्रा है। वह विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभा शंकर की मेधा और प्रतिभा से आकृष्ट होकर यौवन सुलभ आदर्शवादिता में उनसे विवाह कर लेती है। दोनों की उम्र में खासा 20-25 वर्ष का फासला है। निर्मला की निर्मला तथा सेवा सदन के सुमन या गबन की रतन की भांति रेखा के सम्मुख कोई आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक व्यवस्था नहीं थी। रेखा प्रोफेसर से विवाह तो कर लेती है, परंतु विवाह के बाद में उसका दाम्पत्य जीवन गड़बड़ा जाता है। वैवाहिक जीवन के कुछ महीने भावुकता और श्रद्धातिरेक में गुजर जाते हैं। परंतु बाद में धीरे धीरे वह समझने लगती है कि प्रोफेसर उसको आत्मिक या मानसिक प्रेम तो दे सकते हैं, परंतु उसकी यौवनोन्मुख वासना की उतांग तरंगों को शांत करने की क्षमता उनमें नहीं है। इसका प्रथम एहसास रेखा को तब होता है जब वह युवा राम शंकर के संपर्क में आती है। रमा शंकर प्रोफेसर प्रभा शंकर का इलाहाबाद स्थित रक्षित देवकी का पुत्र है और उम्र में लगभग रेखा का समवयस्क है। जर्मनी जाने से पूर्व वह अपने धर्म पिता से मिलने दिल्ली आता है। रेखा उसे शॉपिंग में सहायता करती है। गाड़ी में साथ साथ बैठते हुए बार बार अनायास रेखा का हाथ उसके कंधे पर चला जाता है। यौवन की प्रथम मादक सुगंध का अनुभव तब रेखा को होता है। रमा शंकर प्रभा शंकर का पुत्र है, अतः उसके भीतर के नैतिक संस्कार तथा विवेक उसे पतनोन्मुखी स्थिति से बचा लेते हैं, परंतु उसकी आंतरिक नैतिकता में एक छोटा सा सुराग उस दिन हो ही जाता है। फिर रमाशंकर चला जाता है। यदि वह अधिक समय तक ठहरता तो हो सकता है कि रेखा का शारीरिक पतन भी हो जाता, परंतु उस दिन से रेखा रात रात भर तड़पती और करवटें बदलती रहती है। उससे शारीरिक प्रेम की माना उस दिन से तलाश शुरू हो जाती है। पृष्ठ संख्या 131, पैराग्राफ चेन। उक्त घटना के कुछ दिन बाद रेखा का भाई अरुण विदेश से आता है। अरुण के साथ उसका मित्र सोमेश्वर दयाल भी है। रेखा उसके प्रति आकृष्ट होकर उसे समर्पित हो जाती है। इन संबंधों के बाद रेखा के मन में मानसिक उहापोह जागृत होता है, परंतु उसके भीतर का इड उसके ईगो के सामने पराजित हो जाता है। सोमेश्वर से उसे गर्व भी रहता है, परंतु अरुण के द्वारा यह समाचार मिलने पर कि सोमेश्वर अमेरिका में पागल हो गया है, वह गर्व को गिरा देती है, क्योंकि एक पागल के गर्व को ढोना उसे उचित नहीं लगता। सोमेश्वर के बाद रेखा को मानसिक झिझक कम हो जाती है और उसके भीतर की क्षुधित कामाग्नि उसे नए नए पुरुषों के शिकार के लिए प्रेरित करती है। सोमेश्वर के उपरांत उसके जीवन में एक एक करके पांच दूसरे पुरुष आते हैं, शशिकांत, निरंजन, शिवेंद्र धीर, मेजर यशवंत सिंह और योगेंद्र मिश्र। इनमें से शिवेंद्र धीर नपुंसक होने के कारण रेखा उससे शारीरिक संबंध विकसित नहीं कर पाती, बाकी लोगों से उसके संबंध विकसित होते हैं। शिवेंद्र धीर एक कलाकार है और उसका व्यक्तित्व स्त्रियों को चुंबक की तरह आकर्षित करता है, परंतु कुछ ही दिनों में स्त्रियां उससे अलग भी हो जाती हैं। केवल एक ज्ञानवती ऐसी है जो यह जानते हुए भी कि शिवेंद्र धीर नपुंसक है उससे तहे दिल से प्रेम करती है, उस पर अपना तन मन धन सब निछावर करती है और उसकी कला को प्रोत्साहन देती है। पैराग्राफ चेन। शशिकांत प्रोफेसर प्रभा शंकर का भूतपूर्व छात्र था तथा विदेश में भारतीय सचिवालय में किसी अच्छे पद पर आसीन था। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में रेखा से उसकी भेंट होती है और वह भेंट बाद में घनिष्ठता में बदल जाती है। निरंजन कपूर मिसेस रत्ना चावला की पुत्री सीरी का भावी पति है, परंतु सीरी से ज्यादा वह मिसेल रत्ना चावला से अधिक आकृष्ट है और मिसेज रत्ना चावला भी अपने भावी दामाद के साथ खूब रंगरेलियां मनाती हैं। निरंजन के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सीरी में वह गर्मी और ऊष्मा का अभाव है जो मिसेस चावला में है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस मिसेस चावला के संबंध प्रोफेसर प्रभा शंकर से भी है, और जो प्रोफेसर रेखा जैसी नवयुवना को संतुष्ट नहीं कर सकते, तो क्या वह मिसेज रत्ना चावला जैसी प्रौढ़ा के साथ सफलतापूर्वक शारीरिक समागम कर सकते हैं? इस प्रकार प्रोफेसर प्रभा शंकर में नपुंसकता का एहसास है। वह पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है। अपराध बोध और लघुता ग्रंथि के कारण प्रोफेसर प्रभा शंकर रेखा से सफल शारीरिक समागम करने के बाद धीरे धीरे अक्षम हो जाते हैं। वस्तुतः उसकी यह नपुंसकता प्राकृतिक नहीं, मानसिक है। आधुनिक कामशास्त्र की यह अवधारणा कि कई बार ऐसे लोग जो एक व्यक्ति के साथ नपुंसकता का अनुभव करते हैं, स्वतंत्र एवं भय रहित होकर दूसरी व्यक्ति के साथ पुरुषत्व का परिचय देते हैं। पैराग्राफ चेंज। निरंजन कपूर से भी रेखा का परिचय मिसेस चावला के कारण होता है। रेखा को सीरी से सहानुभूति है, अतः वह अपने पति को उसकी माँ से हटा लेती है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में जस्टिफिकेशन कहते हैं। रेखा निरंजन कपूर के साथ मसूरी में खूब राग रंग खेलती है, परंतु एक बार निरंजन का सिगरेट केस डॉक्टर प्रभाशंकर के तकिए के नीचे रह जाता है और दोनों की चोरी पकड़ी जाती है। प्रोफेसर प्रभाशंकर बहुत ही उत्तेजित होकर रेखा को मारते पीटते हैं, पृष्ठ संख्या 132, और उसको घर से बाहर निकाल देने को भी तैयार हो जाते हैं। परंतु बाद में रेखा के बहुत क्षमा याचना और गिड़गिड़ाने पर प्रोफेसर उसे रख लेते हैं। परंतु उस दिन से रेखा के चरित्र को लेकर आशंका का भूत प्रोफेसर के चिदाकाश में मंडराने लगता है और उसके कारण वे अपना मानसिक सुख चैन और संतुलन खो बैठते हैं। उसके बाद प्रोफेसर का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जाता है और अंत में लकवाग्रस्त हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। निरंजन कपूर वाली घटना के बाद कुछ समय के लिए रेखा संभल जाती है, परंतु यौन क्षुधा से पीड़ित रहने वाली रेखा अधिक समय तक संयम नहीं रख पाती और शिवेंद्र धीर, मेजर यशवंत सिंह और डॉक्टर योगेंद्र मिश्र के प्रति आकृष्ट होती है। उनमें से धीर को छोड़कर शेष दोनों से उसके संबंध रहते हैं। मेजर यशवंत सिंह को वह बम्बई में मिली थी और जब जब बम्बई जाना होता था मेजर से वह मिलती थी, बल्कि बम्बई जाने के बहानों को तलाशती रहती थी। वैसे रेखा के जीवन में कुल 7 पुरुष आए, परंतु इन सब को रेखा ने यदि किसी को तन मन से चाहा तो वह है डॉक्टर योगेंद्र। डॉक्टर योगेंद्र को प्रोफेसर प्रभाशंकर ही बम्बई से दिल्ली रीडर बनाकर लाए थे। रेखा और डॉक्टर योगेंद्र के संबंधों को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चर्चा होने लगती है, जिसके कारण प्रोफेसर की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचता है। लो ब्लड प्रेशर और हृदय के दौरे के हल्के प्रभार से वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। अतः प्रोफेसर ही डॉक्टर योगेंद्र को अमेरिका की ओसला यूनिवर्सिटी में भेजने का प्रबंध करते हैं। रेखा के आग्रह के कारण डॉक्टर योगेंद्र पहले मना करते हैं, परंतु बाद में प्रोफेसर के समझाने पर विदेश जाने को तैयार हो जाते हैं। जिस दिन डॉक्टर योगेंद्र की फ्लाइट होती है उसी दिन गर्मा गर्म बहस के कारण प्रोफेसर के एक पैर को लकवा मार जाता है। रेखा देव की ब्रैकेट में प्रोफेसर की इलाहाबाद वाली रक्षिता को बुला लेती है और डॉक्टर योगेंद्र के साथ विदेश भाग जाने की योजना बनाती है, परंतु ऐन मौके पर भावुकता के कारण वह हवाई अड्डे पर समयानुसार नहीं पहुंचती। फलतः डॉक्टर योगेंद्र से उसकी भेंट नहीं होती और वह निराश होकर घर लौटती है। यहाँ प्रोफेसर के प्राण पखेरु भी उड़ गए हैं। इस प्रकार एक प्रकार की त्रासद स्थितियों में उपन्यास का अंत हुआ है। इस प्रकार की कथावस्तु को लेकर गुजराती के उपन्यासकार ईश्वर पेटलीकर ने प्रेम पंथ नामक उपन्यास लिखा था, परंतु उसकी नायिका ज्योथिका यौनाकर्षण की अवस्था को लांघ जाने के पश्चात अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से शादी करती है, अतः वहां शारीरिक क्षुधातुरता का कोई प्रश्न नहीं उठता। वस्तुतः रेखा कामजनित समस्याओं पर आधारित उपन्यास है। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने रेखा के चरित्र की आलोचना करते हुए कहा था, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, रेखा को उपन्यासकार की सहानुभूति मिली है और पाठक भी उससे घृणा नहीं करता, पर ऐसे चरित्रों से समाज का कौन सा कल्याण होगा, यह प्रश्न विचारणीय है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ हिंदी उपन्यास शिल्प और प्रयोग डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, पृष्ठ संख्या 372। परंतु उपन्यासकार का उद्देश्य तो वास्तविक चरित्रों का निर्माण करना होता है। दूसरे लेखक प्रकारांतर से यही तो प्रस्थापित करते हैं कि भावुकता की लहर में शरीर धर्म की उपेक्षा करना कितना खतरनाक हो जाता है। दूसरे प्रोफेसर प्रभाशंकर ने एक किशोर युवा लड़की की भावुकता का जो लाभ उठाया उसका परिणाम भी उपन्यास में ध्वनित हुआ है। वस्तुतः रेखा को प्रताड़ित करने का प्रोफेसर को कोई अनैतिक अधिकार नहीं पहुंचता, पृष्ठ संख्या 133, क्योंकि अपनी युवानी में प्रोफेसर खूब खुलकर यौनानंद के खेल खेल चुके हैं। एक स्थान पर देवकी कहती है, इन्वर्टेड कमापन, शिकार का तो शौक उन्हें है लेकिन शेर चीते आदि जंगली जानवरों के शिकार का शौक नहीं। ये शहर के आसपास उड़ने वाली चिड़ियों का ही शिकार करते हैं और इसमें इनका निशाना अचूक होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ रेखा भगवती चरण वर्मा, पृष्ठ संख्या 107। वस्तुतः प्रोफेसर ने जो किया था उसका हश्र यही हो सकता था। कमलेश्वर ने सन 1972 में हुए एक सेमिनार में कहा था, इन्वर्टेड कॉमापन, द हिंदी नॉवेलिस्ट ऑफ टुडे रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द कंक्लूजन्स परटेनिंग ऑफ वैल्यूज, हिज कंक्लूजन फ्लो फ्रॉम लाइफ इट्सेल्फ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ कामदेव, सेमिनार क्रिएटिव राइटिंग इंडियन लैंग्वेज, सन 1972, पृष्ठ संख्या 47। और इस कसौटी पर उपन्यास की यथार्थता खरी उतरती है।